ओम शांति। 1969, एक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी भारत के एक शहर में आई। 1979, वो कारखाना खुला और वो कीटनाशक एक केमिकल से बनता था जिस केमिकल का नाम था MIC। शहर के बीचों बीच वो कारखाना। 1984, जबकि भारत में उस स्थान पर सूखा पड़ा था और एक तरफ क्रिकेट में भारत वर्ल्ड कप जीत रहा था।
3 दिसंबर 1984,
मध्य रात्रि, वो जो कारखाना था जिससे वो कीटनाशक बनता था, उस कारखाने में वो जो गैस थी वो लीक हुई। उस गैस का रिसाव हुआ। वो एक अमेरिकी कंपनी थी और वैसी ही कंपनी अमेरिका में भी थी, पर अमेरिका की कंपनी और इस कंपनी में बहुत अंतर था। वहां के सेफ्टी मेजर्स बहुत ज्यादा थे, यहां के सुरक्षा के जो मानक थे उनका उतनी तीव्रता से पालन नहीं हो रहा था। और जैसे कहा, वहां सूखा पड़ा था और बहुत सारे मजदूर उस कारखाने में थे, और जो भी सुरक्षा के प्रमाण थे वो अंग्रेजी में लिखे हुए थे, और वो जो भारत के मजदूर थे उस शहर के, सभी अंग्रेजी नहीं जानते थे। और मध्य रात्रि वो जो गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का रिसाव हुआ। और जबकि एक दो पत्रकार कुछ सालों से ये बता रहे थे कि यहां जो कंपनी है, अगर इस गैस का लीक हो गया तो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये गैस जहरीली गैस है। और 3 तारीख को जब कंपनी बंद थी, रात्रि का समय था और कहीं शादियां चल रही थी तो कहीं लोग सो रहे थे, वहां पर 40 टन लगभग MIC था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और वेल्व लीक हुई। और जो वेल्व लीक हुई उसको रोकने के जो भी प्रबंधन थे वो सारे फेल हुए। और क्योंकि बिजली की बचत करने के लिए उस प्लांट में कहीं AC की जरूरत थी, वो AC भी नहीं था, जिसके लिए वो वेल्व का लीक नहीं रोक पाए और वो गैस का रिसाव हुआ। और वो गैस देखते देखते वो जहरीली गैस पूरे वातावरण में फैली और लोगों को अजीब सी हलचल होने लगी, किसी को श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, किसी को उल्टियां होने लगी, किसी का जी घुटने लगा, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आंखों से आंसू आने लगे। कुछ ही दिन पहले एक कर्मचारी जिसके हाथ पर एक बूंद वो गैस पड़ी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसका जब खून लिया गया वो चेरी रेड कलर का था। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ये क्या है। एक ही अस्पताल, हमीदा हॉस्पिटल। उस पत्रकार ने बहुत कोशिश की वहां बताने की कि यहां कुछ गड़बड़ है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भारत के मध्य में स्थित भोपाल, साइनाइड यूनियन, और मध्य रात्रि जो गैस लीक हुई, देखते 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 वो गैस चारों ओर फैलने लगी और इंस्टेंट डेथ 75 या 72 घंटों के अंदर देखते ही देखते लगभग, सरकारी आंकड़े तो कम कहते हैं, परंतु 10,000 लोग तुरंत मारे गए, क्योंकि अस्पतालों को यह नहीं पता था यह गैस कौन सी है, और ये नहीं पता था, तैयारी नहीं थी कि यह साइनाइड है। लोग आने लगे, जिस जिस का खून लिया जाने लगा, चेरी रेड कलर का खून, यह है क्या? तैयारी नहीं, इसका एंटीडोट क्या? कैसे इस पॉइजन को निरस्त किया जाए? कुछ भी खबर किसी को नहीं। और देखते ही देखते वो गैस ऐसी फैली कि जितने मछलियां थी पानी में सब मर गई। 2000 से ज्यादा जानवर थे वो मर गए। इतनी खतरनाक, इतनी जहरीली गैस, जो कि यूएस की जो कंपनी थी वहां पे वो छोटे छोटे टैंक भारत में यूज किए गए, परंतु वहां पर बहुत छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स में वो रखी थी। जहां पर टेम्परेचर 4.5 डिग्री चाहिए वहां 200 डिग्री हो गया आधी रात को, और वो गैस ऐसी लीक हुई कि सब जगह फैल गई और लोग घुटने लगे और मर गए। चहुओं और लाशें ही लाशें बिछी थी, पूरा अस्पताल लाशों से भरा हुआ था। किसी के मुंह से खून निकल रहा है, सारे लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या थी 5.5 लाख। अंधे हो गए, विकलांग हो गए, और जो बच गए उनका यह हालत हो गया। आज तक तीसरी पीढ़ी चल रही है, जो जो बचे थे तब उनकी पीढ़ियों में भी बीमारियां चल रही है और उनका इलाज पता नहीं क्या है। इसे औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी दुर्घटना भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस कांड कहा जाता है। और कंपनी ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, और उसके बाद में बहुत कुछ चला, कोर्ट केसेस चली, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे, बहुत सारा कुछ चला। कंपनी का जो मालिक था पकड़ा गया, 6 घंटे के अंदर बेल हो गई, वो विदेश चला गया। 2014 में शरीर छोड़ दिया। वॉरेन एंडरसन, ये घटना हुई 3 तारीख की रात को। हजारों लोग मर गए, कईयों का कहना है 25,000 लोग मर गए, सरकारी आंकड़े है 2,500 लोग, कुछ भोपाल के सरकारी आंकड़े है 3,500 लोग, कुछ कहते हैं 8,000, कुछ कहते हैं 16,000, कुछ कहते हैं 25,000, कोई कहते हैं उससे भी ज्यादा, पता नहीं कितने लोग मर गए एक साथ। एक हफ्ते के बाद भगवान की पधारमणी, ओम शांति भवन, मधुबन, भगवान से बच्चों ने प्रश्न पूछा, बच्चे पूछते हैं बाबा एक साथ इतने लोग क्यों और कैसे मरे। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, बाबा से बच्चों ने क्या प्रश्न पूछा। एक हफ्ते के बाद 3 तारीख को घटना हुई, 10 तारीख को बाबा आए। बाप से बच्चे पूछते हैं बाबा एक साथ इतने लोग क्यों और कैसे मरे। भगवान का उत्तर सबसे निराला है। वहां पर दोषारोपण चालू है, आरोप प्रत्यारोप चालू है, किसने किया, कौन था। वो जो कहां कर्मचारी थे उनको पढ़ाया क्यों नहीं गया, उनको जानकारी क्यों नहीं दी गई, वो वैल किसने लास्ट में देखी थी, कितने बजे क्या हुआ, 10 बजे क्या हुआ, 10:30 बजे क्या हुआ, 12 बजकर इतने मिनट पर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कौन कौन मरे, कौन कौन बचे, सरकार ने क्या क्या किया, और वो कंपनी का माल क्यों बच गया, क्यों छूट गया। ढेर सारे प्रश्न उठे, प्रश्न अब भी चालू है, ऐसा क्यों हुआ। इतनी भयंकर त्रासदी जो आज तक नहीं हुई थी कभी, जिसका प्रभाव अब तक चल रहा है, अब तक बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो कि बच गए थे उस समय। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया आज, बाबा ने क्या उत्तर दिया, बाबा ने उत्तर दिया, दुख की दुनिया में, दुख की दुनिया में दुर्घटनाओं के बादल क्या फटने ही हैं। भगवान ने क्या उत्तर दिया, संपन्न बनने का अब समय है। भगवान ने क्या उत्तर दिया, हजारों आत्माओं के हिसाब किताब कैसे चुप्त होंगे, सिर पर जन्म जन्म के पापों का बोझ है, वो एक जन्म में इतने कम समय में कैसे चुप्त होगा। इसीलिए जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, इसीलिए अकाले मृत्यु के तूफान आएंगे। अब तक सुना था कौन से तूफान, पानी के तूफान, बादल के तूफान, आसमां, समुद्र, परंतु अब कौन से तूफान, अकाले मृत्यु के तूफान। एक साथ हजारों लाखों लोग मर जाएंगे। इसी गैस का प्रयोग कभी हिटलर ने किया था यहूदियों को मारने के लिए, ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना कोई लड़ाई, हवाओं में गैस फैल गई और लोग मर गए। कौन किसके लिए रोएगा, ना कोई अफसोस करने वाला, मातम करने वाला, दुख करने वाला, कौन किसका क्रियाक्रम करेगा। सारे मरे पड़े हैं क्योंकि गैस ऐसी जहरीली थी। लोगों से कहा गया भाव भागो, जाओ पानी में कूदो, पानी मुंह पर लगाओ, दवाइयां खत्म हो चुकी थी, क्या करे, इलाज का भी पता नहीं किसी को। उस समय कितने लोग तालाब में कूदे, मर गए। कैसी खतरनाक जहरीली गैस होगी। तो बाबा से पूछा क्यों और कैसे, उत्तर था हिसाब किताब चुकतु होने है, उत्तर था कम समय में चुकतु करना है, उत्तर था संपन्न बनने का समय है, उत्तर था दुखदायी दुनिया में दुखदायी दुर्घटनाओं के बादल तो फटने हैं, पहाड़ तो गिरते हैं। ये भगवान के उत्तर है। अगर अब नहीं चुकतु हुए तो अगले जन्म में जाएंगे। उत्तर था अब वापस जाने का समय है। इसके लिए इंटरमिटेंट बीच बीच में ये सब होते रहेगा। और भारत में विशेष दो रीति से होगा। कौन कौन सी, सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाएं। क्या है ये प्राकृतिक आपदाएं, संसार के लोग तो समझ ही नहीं पाते, ये पाप है या शाप है या माया है या लीला है भगवान की, ये कुदरत है, ये है क्या, क्यों हो रहा है, क्या दोष है हमारा, क्यों हम मर रहे हैं, क्यों मानवता मरती है। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी इन्हीं प्रश्नों के उत्तर बाबा दे रहे हैं। तो मुरली की शुरुआत क्या कहा बाबा ने, क्या कहा, कौन आया है, कौन आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, कहां आया है, किससे मिलने आया है। तो बाप आए हैं, कहां आए हैं, साकारी दुनिया में। किस तन में आए हैं, साकार तन में आए हैं। किससे मिलने आए हैं, साकार रूपधारी बच्चों से। मुरली को तीन तीन विभाग में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले तीन बातें, बाप आए हैं साकारी दुनिया में, बाप आए हैं साकारी तन में, बाप आए हैं साकार बच्चों से मिलने के लिए, ये पहला। दूसरा, संसार में दुख का वायुमंडल है, और तुम सब कैसे हो, संसार में हलचल का वायुमंडल है। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, भारत में हलचल चालू है, राजनीतिक हलचल भयंकर चालू है, उसको पकड़ा क्यों नहीं, उसको छोड़ा क्यों गया, बाद में वो कभी वापस नहीं आया मालिक भारत में, कितनी बार बुलाया गया पर उन्होंने कहा हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी तरफ से सब कुछ ठीक था। ऐसे भयंकर स्थिति जब भारत में थी, सारे विश्व भर में ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई थी जहां हजारों लाखों लोग प्रभावित हो गए थे। तो संसार में हलचल है और हमारी तीन बातें, हम कैसे हैं, बाप कैसे बच्चों को देखते हैं जबकि संसार में हलचल है और संसार में दुख का वायुमंडल है, अचल अडोल बच्चों को देखते हैं, प्यारे बच्चों को देखते हैं, और तीसरा न्यारे, कैसे न्यारे, कमल पुष्प के समान न्यारे। जब संसार में हलचल होगी और दुख बढ़ेगा ऐसी स्थिति में हम अचल है, ऐसी स्थिति में हम प्यारे हैं, ये बाबा ने देखा। तो संसार में हलचल और इधर ये तीन बातें। तीसरा, संसार में भय का वायुमंडल है और इधर क्या है, फिर से तीन बातें। तुम सब कैसे हो, निर्भय शांत। संसार में भय है, लोग भागने लगे, अपनी अपनी साइकिल लेकर भागने लगे बचाओ, पर कहां साइकिल से भागेंगे उस गैस से, मजदूर थे बेचारे, गरीब थे, हजारों की तादाद में कंपनी में काम कर रहे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। जैसे कहा सारे सेफ्टी मैनुअल्स बुकलेट्स पुस्तिका अंग्रेजी में थी, वो कहां से पढ़ते, उनको तो अंग्रेजी नहीं आती थी, मर गए। वो जानवर कहां भागेंगे, सब मर गए, विषाक्त तो हो गया वायुमंडल जिसका प्रभाव अब भी है। 2010 में भी स्टडी किया गया वायुमंडल, तो कहां गया, उसका प्रभाव अब भी जारी है, दूसरे दूसरे गैस बन गए हैं जहरीले। तो संसार में भय है और तुम कैसे हो, निर्भय शांत। संसार में भय है और तुम कैसे हो, भयभीत नहीं परंतु खुशी के गीत गा रहे हो। दूसरा, संसार में भय है और तुम हो विश्व परिवर्तक और बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह अर्थात संसार की फिक्र का, फिक्रात का अंश मात्र भी प्रभाव नहीं। भगवान की कितनी ऊंची दृष्टि है, संसार की फिक्रात का अंश मात्र भी प्रभाव नहीं, इतने अचल अडोल हो तुम। और जब प्राकृतिक आपदाएं आएगी, ये तो एक मानव जनित मैन मेड डिजास्टर था, जब एक साथ प्राकृतिक आपदाएं, पांच तत्व आक्रमण करेंगे, एक साथ पांचों विकार आक्रमण करेंगे, एक साथ शारीरिक बीमारी आएगी, एक साथ कोई भी साधन नहीं रहेंगे, कैसा दर्दनाक वो मंजर होगा, कैसा दर्दनाक प्रलयंकारी आलम वो वातावरण होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कितना अभ्यास चाहिए उस वातावरण में निर्भय रहने का। होलसेल मौत होगा, मौत का बाजार गर्म होगा। कैसे मरेंगे लोग, क्या उदाहरण दिया बाबा ने, मच्छर चींटी जैसे उनको मारने के लिए साधन का प्रयोग किया जाता है, यहां पर भी ये सारे हिसाब किताब चुकते होंगे। विनाश की मशीनरी, हिसाब किताब की मशीनरी तीव्र होगी। वो मिथिल आइसोन साइनाइड किसके लिए था, कीटनाशक के लिए था। शब्द बाबा के सटीक है, समय अनुचित। 35 साल पहले ये बात हुई, उसके बाद ऐसी बहुत सी छोटी छोटी और भी बातें हुई, इससे बड़ी बड़ी भी हुई और होगी। तो संसार में भय है और तुम कैसे हो, निर्भय। संसार में भय है, तुम हो विश्व परिवर्तक। संसार में भय है और तुम हो, तीसरा, बेफिक्र बादशाह, ये तीसरी बात। चौथी, संसार में भय और चिंता का वायुमंडल है, सबोर। और तुम क्या हो? चिंता नहीं करते हो। तुम क्या हो? शुभ चिंतक हो, शुभ भावना कामना स्वरूप हो, पहली बात। दूसरा, खुशी के गीत गाने वाले यहां है, ये बात। और तीसरा, मानसिक सेवा करने वाले हो, सुख शांति की आत्माओं को अंजलि देने वाले हो। जब संसार में ऐसी हलचल होगी, कौन संसार को थामेगा, कौन संसार को सकाश देगा? वो काम हमारा होगा। हम ही अगर हलचल में आ गए तो संसार की आत्माओं को कौन सकाश देगा? और लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। ए दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं, लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय का अभ्यास, बहुत काल का पुरुषार्थ, चिरकाल का पुरुषार्थ, अचल अडोल रहने का। वहां प्रकृति की हलचल होगी, तुम ऊंचे रहो, तुम फरिश्ता स्वरूप में रहो, तुम बाप की याद में रहो, तुम अशरीरी अवस्था में रहो, तो सेफ हो। तो हमें मानसिक सेवा करनी पड़ेगी, उसके लिए मनसा को शक्तिशाली अब से बनाना है। जब ऐसी त्रासदी होगी, ऐसा डिजास्टर होगा, ऐसी कैलमिटीज होगी, तब कुछ नहीं कर पाएंगे अगर अब नहीं किया था। उसके बाद में तीन बातें जिसकी हमने चर्चा की, दुख मई जन्म, दर्दनाक मृत्यु, और तीसरा अकाले मृत्यु। महाभारत रामायण में वर्णन है, राम राज्य में दिखाया है। एक दिन एक ब्राह्मण श्री राम के पास आता है अपने 12 साल के बच्चे को लेकर। ये मर गया, ऐसे कैसे हो गया? राम राज्य में अकाले मृत्यु हो ही नहीं सकती, जरूर किसी ने कोई पाप किया है। और फिर उस पापी का पता लगाया जाता है, क्योंकि आज तक ऐसे कभी हुआ ही नहीं था। ये कहानी द्वापर की है, तब अकाले मृत्यु नहीं होती थी, अगर हो गई तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, ढूंढा जाता था कारण। बाबा ने कहा काले मृत्यु का तूफान, मरने वालों की संख्या में कितने बच्चे थे उसमें, मरने वाले की संख्या में बुजुर्ग कितने सारे थे, तो अकाले मृत्यु, मम्मा का मास, हर घड़ी अंतिम। शायद जैसे वो रात किसी ने सोचा नहीं था कि ये रात काल सर्पिणी होगी, ये रात अंतिम रात्रि होगी। लोग तो खुश थे, हमको साइनाइड में काम मिल गया, कंपनी में काम मिल गया, ड्रेस मिल गई, दूसरों को दिखाते थे हमको ये ड्रेस मिली है, गर्व था। पर क्या पता वो काल सर्पिणी होगी। क्या हम कह सकते कल सुबह का सूर्य हम देखेंगे और पूरी रात हम जिंदा रहेंगे? कुछ दिन पहले आबू में भी भूकंप हुआ था, रात को 10:30 बजे हिल गया था आबू, वो रिहर्सल थी, झलक, बड़ी झलक, फिर बड़े पैमाने पर होगा, धरती हिलेगी, कंपित होगी, पानी प्यासा होगा रक्त का, एक दिन पानी आग लगाएगा, एक दिन पानी ही मार देगा, एक दिन ऐसा भी होगा, भूकंप, धरती कंपित होगी, झूला झुलाएगी। क्या हमने अपने सारे हिसाब किताब चुक तो कर दिए हैं? भगवान ने कहा अपने आप को चेक करो, अपने आप से पूछो, अंतरात्मा को झकझोरो। चेतना जाग जाए कि यदि आज ही अंतिम रात्रि है जीवन की, तो क्या मैंने अपने सारे हिसाब किताब चुक तो कर दिए? क्या इस संसार की हर आत्मा के साथ मेरे जो हिसाब है सारे चुक तो हो गए हैं? तो ये तीन बातें बताई, जल्दी जल्दी जन्म जल्दी जल्दी, मृत्यु दर्दनाक मृत्यु, दुखदायी जन्म, जन्म हुआ अंधा लूला लंगड़ा, अब तक भी अपंग पैदा हो रहे हैं, इतना जहरीला गया आज तक। तो भगवान कह रहा है दुखदायी जन्म, दर्दनाक मृत्यु और अकाली मृत्यु का तूफान, ये सब होगा, ये सारी घटनाएं होगी, ये तीन बातें। उसके बाद में हिसाब किताब तीन रीति से चुक्त होगा, कौन कौन से? एक तो स्वयं स्वयं के से, दूसरा संबंध संपर्क, और तीसरा प्राकृतिक आपदाएं। स्वयं स्वयं की कैसे? शारीरिक बीमारियां, दूसरा मानसिक कमजोरी, और तीसरा भूत विकारों की प्रवेशता। तीन रीति से स्वयं के हिसाब किताब चुक्त होंगे। दूसरा संबंध संपर्क, बाबा ने कहा ये सब आप जानते ही हो ही रहे हैं संबंध संपर्क से। तीसरा प्राकृतिक आपदाएं, तो बाबा ने कहा ये तीन रीति से हिसाब किताब चुक्त होंगे। अपने आप को चेक करो, कोई हिसाब रहा तो नहीं है? हिसाब रहने की क्या निशानी है? और हिसाब पूरे हो गए मेरे, इस संसार में अब मेरा किसी से कोई हिसाब नहीं, इसकी क्या निशानियां हैं? ये भी सुनाई, उसकी चर्चा करेंगे। उसके आगे और तीन बातें, तीन प्रकार की परवश स्थितियां, कौन कौन सी? जो निशानियां हैं कि हिसाब किताब अभी रहे हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे इस व्यक्ति के साथ सारे हिसाब किताब पूर्ण हो गए। उसकी तीन निशानियां, तीन परवश स्थितियां। सबसे पहले अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण होना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, सोचता हूं ये नहीं करूं फिर भी होता है, सोचता है ये करूं परंतु हो नहीं पाता, असफलता मिलती है, परवश हो जाता हूं। अपने ही स्वभाव संस्कार, इस संसार में मेरे लिए सबसे अगर बड़ी बाधा कोई है, सबसे बड़ा विघ्न कोई है, तो वो कौन सा है? मेरे ही स्वभाव संस्कार। मैं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूं और मैं ही अपना सबसे बड़ा मित्र हूं, मैं ही बाधा हूं। अपने आप को हटा दो अपने मार्ग से। हे मेरे संस्कार हट जा, मुझे अपनी मंजिल तक जाने से न रोक, मंजिल आगे है, मुस्तकबिल पुकार रहा है। स्वयं ही के स्वयं के संस्कार ऐसे बन गए कड़े कि बाबा ने शब्द प्रयोग किया परवश, साकार मुरलियों में आता है वशीभूत, नहीं चाहते पर कर रहे। दारू पीने वाला रोज दिन भर सोचता है कि नहीं 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 बहुत खराब है, नहीं पीना चाहिए, संकल्प करता है, शक्तिशाली संकल्प करता है, सारे चित्र देखता है, ये बीमारी हो सकती है, पत्नी को देखता है, बच्चे को देखता है, क्या हालत हो रही है इनकी, बिल्कुल नहीं, आज से बंद, पर शाम आ जाती है और जैसे ही शाम आती है अपने आप कदम मधुशाला की तरफ निकल पड़ते हैं, मैं खाना पुकारता है अपने आप, और फिर पीता है और पीकर फिर पश्चाताप करता है, और फिर दूसरे दिन फिर संकल्प करता है, और सारे दिन भर श्रेष्ठ संकल्प महान संकल्प करता है, पढ़ता है उसके बारे में, चर्चा करता है कितनी उसकी उससे नुकसान होता है, परंतु जैसे ही शाम आती है अपने आप कदम मधुशाला की तरफ। क्या कहेंगे इसको? परवश वशीभूत। एक व्यक्ति सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए कदम उस तरफ चल रहे हैं, पर मैं आज पीऊंगा नहीं, सारे दिन भर के संकल्प किए हुए उसका प्रभाव है, शायद अमृत वेला शक्तिशाली भी किया होगा, उसका भी प्रभाव है, चल रहे हैं चल रहे हैं, वो मैखाना वो मधुशाला वो शराब खाना आ गया, चल रहा है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखना भी नहीं है उधर, चल रहा है, बिल्कुल देखना नहीं है, क्रॉस कर लिया, अतीन्द्रिय सुख जीत हो गई आज, सफलता है मेरे मन, तू जीत गया, इसी खुशी में आज तुझे मैं जी भर के पिलाता हूँ। और वापस मधुशाला की तरफ, फिर से वही फ्रस्ट्रेशन और फिर से वही पश्चाताप और फिर से वही दुख। और कैसा ये कुचक्र है और कैसे इससे निकलेगा? भगवान कहता है ये परवश आत्माओं की निशानी है, चाहते नहीं है कर देते थे, चाहते हैं कर नहीं पाते, अपने ही स्वभाव संस्कार के भंवर जाल में फंसे हैं। ये सबसे पहली परवशता। दूसरा संबंध संपर्क, सब कुछ कर लिया एक आत्मा के साथ, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा ज्ञान योग का, फिर भी हिसाब टूटता नहीं, मिटता नहीं, कटता नहीं, समाप्त नहीं होता। सोच रहे किसी मुरली में, किसी क्लास में शायद कोई पॉइंट मिल जाए जो अब तक नहीं की, पर वो आती ही नहीं पॉइंट। जो आती है वो पता है कुछ तो नया मिल जाए, कि इस आत्मा के साथ जो कड़ा हिसाब चल रहा है वो समाप्त हो जाए, संबंध संपर्क के में परवश। और तीसरा वायुमंडल वातावरण के परवशता। तो तीन प्रकार के हिसाब जिससे चुप्त हो गए, तीन प्रकार और तीन ये परवशता। बाबा ने कहा क्या निशानियां हैं, तो ये निशानियां उस आत्मा की क्या निशानियां जिसके हिसाब किताब चुप्त हो गए, उड़ति कला। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाउ टू सेटल कार्मिक अकाउंट्स। एक ऐसा प्रश्न है जिसके विषय में हर एक खुद ही चिंतन करे कि सारे हिसाब किताब चुप्त करने की विधि क्या है। मेरा इस संसार में किसी भी आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब रहना कोई ना रहे, मनुष्य आत्माओं के साथ, जानवरों के साथ, प्रकृति के साथ क्या किया जाए? अब ये प्रश्न क्या कहेंगे, क्या करें? अब तक ऐसी बहुत आत्मा है जो ये भी कहती कि हमारा अभी सारे हिसाब किताब चुप्त हो गए, किसी के साथ अब कुछ रहता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ना कोई झगड़ा है, सबके साथ अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक। पर भविष्य भी ऐसा रहेगा कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हिसाब बड़े सूक्ष्म है, कब कौन सी आत्मा अचानक सामने आ जाए कड़ा हिसाब लेकर पता ही नहीं, सोचा ही नहीं था कभी। इसके पहले भी सुनाया था कि 1994 यूएस की एक फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की मीटिंग में वहां के फॉरेंसिक एकेडमी के जो प्रेसिडेंट थे जॉन बिल हार्पर, उन्होंने कहानी वहां बताई थी उनके फॉरेंसिक करियर में आई हुई। एक व्यक्ति ने खुदकुशी की, 10वें माले से वो गिरा नीचे, सुसाइड नोट छोड़ के गया, मैं दुखी हूं, उदास हूं, मेरे लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, मैं खुद, सीधा साधा केस है, खुदकुशी कर ली, सुसाइड नोट है, इसमें सीआईडी और ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है पुलिस की। परंतु वो कूदा 10वें माले से और दूसरे माले पे एक सेफ्टी नेट था, जाली बिछा के रखी थी पहले से ही लोगों ने, वो बिल्डिंग वालों ने, ताकि कोई ऐसा करे तो बच जाए। और फिर पता चला ये तो सुसाइड नहीं है, फिर कारण क्या हुआ, मरा कैसे? पता चला उसको गोली लगी है। फिर ढूंढा गया गोली किसने चलाई, तो पता चला 9वें माले पर एक वृद्ध दाम्पत्य रहते हैं, उनमें आपस में झगड़ा चालू था, और जो पति देव थे बूढ़े से, उन्होंने वो बंदूक अपनी पत्नी को मारी थी गुस्से गुस्से में, परंतु उसको न लगकर इसको लग गई और इसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये सुसाइड का केस नहीं रहा, होमिसाइड का केस बन गया, और सारा आरोप आ गया उस वृद्ध व्यक्ति पर। उन दोनों को पकड़ा गया, उस महिला और उसको, और पूछा गया, वो कहते हम तो ऐसे कई बार करते हैं, मैं तो हमेशा इसको डराते रहता हूं, और पर मैंने आज तक कभी गोली नहीं चलाई, मुझे पता था मेरे पास जो बंदूक है लाइसेंस वाली है और उसमें कभी भी गोली नहीं रहती है। तो अभी तो क्योंकि ए ने अगर बी को गोली मारी और बी को न लगते हुए सी को लग गई, फिर भी केस तो बनता है, परंतु यहाँ उसका इंटेंशन ही नहीं था मारने का अपनी पत्नी को। वो तो कहता है मैं हमेशा ही इसको बंदूक से डराता हूँ, वो पत्नी भी कहती है हाँ ये हमेशा ही मुझे डराते हैं, पर मारी नहीं आज तक कभी। फिर पता चला एक नया विटनेस मिला, उस विटनेस ने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा है जिसमें एक हफ्ते पहले उस बंदूक में गोलियां भरी थी चुपके से। फिर सारा केस अब उस व्यक्ति की ओर चला गया कि जिसने गोलियां भरी थी, और गोलियां भरने वाला फिर पता चला उनका ही बेटा था, और वो जो बेटा था ड्रग एडिक्ट था, और वो अपने पिताजी से पैसे मांगता था, पिताजी ने पैसे देना बंद कर दिया, मां से मांगता था, मां ने बहुत डांटा, तो उसने कहा बदला ही लेता हूं अब मां बाप से, और गोलियां भर दी, और उसके पिताजी ने ही गोली चलाई, और लास्ट ट्विस्ट इन द स्टोरी जिसने खुदकुशी की थी वही उनका बेटा था। केस क्लोज्ड, क्योंकि उसी ने गोली भरी थी, उसी के पिताजी ने गोली चलाई और उसको लगी, तो सुसाइड ही होगी, मर्डर नहीं रहा। कर्म की बड़ी सूक्ष्म गति है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है कहां से हो रहा है, हमारा ये लौट कर वापस आ रहा है, घूम रहा है सर्कल में। जैसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति उद्योगपति किसी छोटे गांव में जाता है, रात भर उसे रुकना है, एक अच्छा सा होटल देखता है जो गांव का सबसे बड़ा होटल है, होटल में जाता है, वो कहता है मुझे रात भर रुकना है, वो कहता है रुकिए, वो कहता है पर मैं कमरा देखूंगा कैसा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग तुम्हारी और इतने छोटे गांव में, वो कहता है मुझे कमरा देखना है, वो कहता है हमारा नियम है कमरा भी देखना है तो कैश डिपॉजिट करनी पड़ेगी, उसके सिवा तुम कमरा नहीं देख सकते, वो कहता है लो 1000 रुपए और मुझे कमरा दिखा, और वो कमरा देखने नौकर को भेज देता है, कमरा देखने चला जाता है। वो जो मालिक होता है वो इतना खुश हो जाता है 1000 रुपए मिलके, फटाफट भागता है क्योंकि उसको दुकानदार के 1000 रुपए देने थे, क्योंकि लिया था सामान के लिए राशन पानी, दुकान को 1000 रुपए देता है, दुकानदार को 1000 रुपए पाते खुश होता है क्योंकि उसको किसान को 1000 रुपए देने थे, क्योंकि सामान लिया था 1000 रुपए दिए नहीं थे, किसान को भागकर 1000 रुपए देता है, किसान को बैंकर जो बैंक में काम करने वाला व्यक्ति उससे उधार लिए थे, फटाफट भागता है और बैंकर को 1000 रुपए देता है, बैंकर अपने घर पहुंचता है, पत्नी कहती है कि हम उस होटल में एक बार रुके थे अभी तक पैसे दिए नहीं, और वापस होटल के मालिक के पास पहुंचती है 1000 रुपए देती, तब तक ये अमीर आदमी नीचे से ऊपर से नीचे आता है, कहता है कमरा मुझे पसंद है मेरे 1000 रुपए वापस। तो 1000 रुपए वापस हो गए और गांव के कितने लोगों के कर्जे चुक्त हो गए, 1000 वही उसको मिल गए, पर उस बीच ढेर सारे बीच बीच के सारे कर्जे चुक्त हो गए। ये सारा कुछ हमारे साथ जो हो रहा है, ये क्यों व्यक्ति है इस घर में, यही माँ बाप क्यों मिले, ये बहन भाई क्यों मिले, यही सेंटर क्यों मिला, मधुबन में यही डिपार्टमेंट क्यों, और यही कमरा क्यों, और ये माता ही क्यों है मेरे साथ, सब क्या है, खेल हो रहा है, सब क्या है, हिसाब किताब हो रहा है। और यदि हिसाब किताब चुप तो करने हैं तो विधि क्या है, फिर मुझे कोई भी सबसे पहले नए हिसाब किताब नहीं बनाने, ये जान लेना कि ये हिसाब किताब चल रहे है, चुकतू हो रहे है, ये आत्माएं जो मेरे इर्द गिर्द है, जरूर इनके साथ बहुत गहरे और कड़े हिसाब है, अभी मुझे न्यूट्रल रहना है, झुक जाना, ये विधि है हिसाब किताब चुकतू करने की, माफ कर देना, ये विधि है हिसाब किताब चुकतू करने की, मानसिक माफी मांग लेना, ये विधि है हिसाब किताब चुकतू करने की, जो हमें अपना शत्रु समझता है उसे रोज सूक्ष्म पॉजिटिव प्रकंपन पहुंचाना, हमारे सूक्ष्म सकारात्मक प्रकंपन वाइब्रेशन से हमारे हिसाब किताब को चुकतू करेंगे, और कोई विधि नहीं है। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, डिबेट करने से, वाद विवाद करने से, डिस्कशन करने से, चलो बैठ के सुलह करते हैं, ये सब ऊपर की बातें हैं, सूक्ष्म में हमारी मनसा शुभकामनाएं, तो सबसे पहले हिसाब किताब आएंगे बाबा ने कहा शरीर के, और शरीर के आ भी जाती है, बीमारी आ भी जाती है, तो ये चिल्लाने में ये क्यों वो क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों। अच्छा है शारीरिक बीमारी आ गई, जितनी आनी है आने दो फटाफट, बहुत अच्छा है, चुप तो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मुक्त हो रहे हम इस शरीर, ये शरीर की वेदना से ये भी तो पता चल रहा है कितना हम देहभान में हैं, कितना वो देहभान सघन है। बहुत पीड़ा हो उस समय अशरीर बनना कितनी बड़ी साधना है, क्या हो सकता है। और जब बीमार पड़े तो ये भी अभ्यास करना है, बजाय इसके इसको दोषी ठहराना, इसकी वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, इसने किया, उसने वो किया, शारीरिक हिसाब किताब खुशी खुशी चुप्त करना, दूसरी आत्माओं के हिसाब किताब माफ करके, माफी मांगकर सूक्ष्म वाइब्रेशंस देकर चुप्त करना, और प्रकृति के हिसाब किताब प्रकृति की सेवा कर। हमें रोज क्या करना है, प्रकृति की सेवा करनी है। जहां ब्राह्मणों के कदम होंगे, क्या आज की मुन्नी मुरली, जहां ब्राह्मणों के कदम होंगे वहां वहां कोई नुकसान नहीं होगा, उस स्थान का कोई नुकसान नहीं होगा, स्थान तो आश्रम बन जाएगा, ब्राह्मणों का कोई नुकसान नहीं होगा। याद विधि है प्रकृति को सकाश देना, एक बाप की याद में रहना, ये बड़ा गहरा विषय है, कार्मिक अकाउंट को कैसे सेटल करें, तैयार हो जाए कि मुझे ये सारे हिसाब किताब अभी ही चुप्त कर देने, नए हिसाब किताब किसी भी आत्मा से नहीं बनाने, षड्यंत्र करना, योजना बनाना, इसको ये बोलूंगा, उसके वो बोलूंगा, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, जिसने जो किया वही करना चाहिए था, अच्छा है उसने किया, इसलिए तो हमारे हिसाब किताब चुप्त हो जाएंगे। धन्यवाद उस आत्मा की जो हमारे जीवन में बाधा बनकर आई है, संकट बनकर आई है, निंदा करती है, ग्लानी करती है, अपमान करती है, धोखा देती है, खंजर भोगती है, धन्यवाद, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे क्या होने वाले हैं, हिसाब किताब सारे चुप्त, और हमारा लक्ष्य है सारे हिसाब किताब चुप्त कर वापस निर्वंदन होकर हल्का होकर उड़ती कला में चले जाए, यहाँ हार हो जाए चलेंगी। हिसाब किताब चुप्त करने की विधि है झुक जाना, अपने अहंकार को, अपने अना को, अना अर्थात अहंकार, उस अना को झुका देना, तभी आत्माओं से हिसाब किताब चुप्त होंगे, नहीं तो वो कुछ करेंगे हम कुछ करेंगे, उसने कुछ किया फिर हमने कुछ किया, ये अंतहीन है, झुक जाओ, यहां झुक जाओ वहां ऊंचा पद पाओगे, यहां झुक जाओ वो खुदा के सामने उसका औहदा बुलंद है जो यहां झुकता है। He that is last shall be the first in my kingdom. He who is first shall be the last in my kingdom. Jesus Christ कहता है जो यहां बहुत आगे आगे करता है वो मेरे राज्य में सबसे पीछे होगा, और जो यहां सबसे नम्र है झुक जाता है वो मेरे राज्य में सबसे आगे है। तो हिसाब किताब क्या करने हैं, चुप्त कर जाने, और ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं है जिसके हिसाब किताब चुप्त हो गए, सभी के कुछ न कुछ है, और जिनको लगता है हो गए वो क्या करें, भविष्य में आने वाले जो हिसाब किताब है उनको ही सकाश देनी है। कल सुबह से शाम तक जो आत्माएं माया बनकर आने वाली है उसको पहले से ही सकाश देके रखनी है, ताकि थोड़ा कम तीव्र हो, जितना उसने सोचा है आवेग से मैं सामना करूंगा वो थोड़ा सा हल्का हो जाए, तो उनको भी सकाश देना है जो अब तक आए नहीं है हमारे जीवन में संकट बनकर, कि ये आत्माओं कल जब तुम आओगे तो क्या उनको भी प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने, शुद्ध प्रकंपन, तो ये सारी बातें हैं हिसाब किताब की, अपने आप को मुक्त करते जाना है। छोटा मोटा अपमान ठीक है, सह लो और आगे बढ़ो। प्रतिकार नहीं करना है, प्रतिशोध नहीं लेना है, रिवेंज नहीं लेना है किसी का, क्योंकि हम रिवेंज लेने जाएंगे तो नया हिसाब बनेगा। उसने जो किया, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, ये कैसे समझे कि हमारा हिसाब किताब बन रहा है या चुप्त हो रहा है। हमेशा ये प्रश्न पूछते, ये नया बन रहा है या पुराना चुप्त हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, हमेशा ये समझना पुराना चुप्त हो रहा है। क्या समझना? पुराना था, चुप्त हो रहा है। अब उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, तो अभी ये पुराना है या नया है, मुझे कुछ कल करना है। रात भर षड्यंत्र बनाऊंगा, अमृत वेला, शक्तिशाली स्थिति होती है। अच्छा सोच सकते हैं एकाग्रता से कि उसने हमको ऐसे ऐसे कहा, अब हम ऐसे ऐसे करेंगे, और बाबा आप साक्षी हो, आपकी ही प्रेरणा से। देखो इधर से किरणें आ रही है और इधर लिख रहा हूं कि उसने हमारा ऐसा ऐसा कर लिया, अब हम ये करेंगे। और फिर हम थोड़े से निश्चिंत है कि बाबा की प्रेरणा से ही हम कर रहे, क्योंकि अमृत वेला जो लिखा जाता है हम ये समझते उसकी प्रेरणा से हो रहे। कैसा मीठा भ्रम है, हमारे ही मन की बातें हम ही सुन रहे और हम ही दिख रहे। भगवान का तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, वो बेचारा निर्दोष, और हम उसको घसीटते हैं कि तुम्हारी कुटिया में बैठ के लेटर लिखा था और उसने ये सारी बातें पहले ही बोल दी थी, अब मुझे मत बोलना कि गलत कर दिया। तो ये सातवीं बात। उसके बाद में मिलन की तीन बातें बाबा ने कहा है, ये बाप और बच्चों का मिलन दर्दनाक संसार में यहाँ खेल है, पहली बात। यहाँ पे नाचना और गाना है, दूसरी बात। और यहाँ तुम कौन सा सहयोग देते हो मिलन में? साहस का सहयोग देते हो एक दूसरे को। तो मिलन की ये तीन बातें, टीचर से भी मुलाकात की, उनकी भी तीन बातें, ज्यादा विस्तार उसका नहीं करेंगे। पहला तो रूहानी सेवाधारी हो। पहला रूहानी सेवाधारी अर्थात रूह की स्थिति में स्थित हो, रूह की सेवा करना। दूसरा रूहानी गुलाब हो, खुशबू फैलाते हो, रिफ्रेश करते हो। और तीसरा बाप समान भाग्य बनाने वाले। तो तीन 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 बातें। सबसे पहले बताया साकार बाप, साकार दुनिया, साकार तन और साकार बच्चे। दूसरा बताया संसार में हलचल और तुम अचल अडोल, तुम न्यारे तुम प्यारे। तीसरा बताया संसार में भय, तुम निर्भय, तुम विश्व परिवर्तक, तुम बेफिक्र बादशाह। चौथा बताया संसार में भय और चिंता और तुम शुभ चिंतक, और तुम कैसे शुभ चिंतक। दूसरा गीत गाने वाले और तीसरा मानसिक सेवा करने वाले, तीन। उसके बाद में फिर तीन, अकाल मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु और दुखदाई जन्म। उसके बाद में फिर तीन, तीन प्रकार के हिसाब, फिर तीन प्रकार के परवश, और फिर लास्ट में मिलन के तीन प्रकार, टीचर्स की तीन बातें। ऐसे कैसे? ऐसे साकार रूपधारी बच्चों को, ऐसे अचल अडोल रहने वाली आत्माओं को, ऐसी निर्भय आत्माओं को, ऐसी विश्व परिवर्तक आत्माओं को, बेफिक्र बादशाह रहने वाली आत्माओं को, फिक्रात का एक अंश का भी प्रभाव जिस पर ना पड़े ऐसी आत्माओं को, ऐसे अचल अडोल आत्माओं को, ऐसे शांत आत्माओं को, निर्भय आत्माओं को, ऐसे कमल पुष्प समान न्यारे प्यारी आत्माओं को, ऐसे हिसाब किताब सब चुप्त करने वाली आत्माओं को, नए हिसाब किताब बनाने वाली न बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे शांति की अंचली देने वाली मानसिक सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकृति की हलचल में भी अचल अडोल, ऐसे उड़ती कला वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे मानसिक सेवा बोल दिया, ऐसे बाप समान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे खुशी के गीत गाने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी गुलाब, रूहानी सेवाधारी, बाप समान भाग्य बनाने वाली आत्माओं को ऐसे सर्व हिसाब किताब जिसके चुप तो हो गए, एक भी हिसाब किताब जिसका बाकी नहीं है, और ऐसी जहाँ मिलन मनाने वाली आत्माओं को ऐसे जहाँ पाव रखो वहां नुकसान नहीं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली आत्माओं को, ऐसी प्रकृति जीत आत्माओं को, माया जीत आत्माओं को, कर्मेंद्रिय जीत आत्माओं को, कर्मातीत आत्माओं को, ऐसे ऐसे बेहद की दृष्टिवृत्ति वाली आत्माओं को, ऐसे हो गया, ऐसे संपूर्ण आत्माओं को, ठीक है, सर्व बंधनों से मुक्त आत्माओं को, और ऐसी बहुत सारी समान युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।